जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतन्दे वरम् वृन्दारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्द निवेशितोज्जलभुजं ध्यायेन् दामिनीं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विद्यं राधे तं मां चरणन्ति ते भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे मस्ते चरणा श्री गुरु गौरांग की कृपा से आज हम लोगों का 12वां या 13वां दिन त्रयोदश दिन निर्विघ्न हमारे परिक्रमा संपन्न हो गई। परिक्रमा संपन्न हुई हम लोगों ने यही हमारा आदि मठ वृंदावन का है रूप सनातन गौड़ीय मठ। इसमें जगह कमी होने से हम लोग वहां कर रहे हैं, अन्यथा यही होता है। बाय द स्पेशल मर्सी ऑफ गुरु गौरांग वी हैव फिनिश्ड आवर 12 डेज एंड 13 डे वी आर बिगिनिंग। दिस इज आवर ओरिजिनल मठ इन वृंदावन and from here we used to do all parikrama and everything, but time changing. When they changing, so many devotees, about 1000 hearing here, so no place, so much difficulty some, so we change in Gopinath Bhavan, there are so many facilities. Ab hum log कल हम लोग आरंभ किया था पंचम जाप, आरंभ नहीं किया था बने भूमिका बांधा था। तो आदौ श्रद्धा, श्रद्धा के संबंध में हम लोग बतलाए हैं, और फिर द्वितीय याम में प्रातःकालीन भजन साधु संग में अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के संबंध में पिछले सालों में हमने बतलाया था चार प्रकार के अनर्थ कौन कौन, स्वरूप भ्रम, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपरा, और इसको भी चार चार करके बतलाया 16। और इसके अतिरिक्त और भी बतलाया कौन, लय विक्षेप, कषाय, इसके अतिरिक्त और भी एक
उत्थ,
तो ये सब अपराधों को समझिए। और समझने के बाद में अनर्थ निवृत्ति अब आंशिक रूप में हुई और फिर प्रीति में निष्ठा उत्पन्न हुई और नैष्ठिक भक्ति के संबंध में विश्वनाथ चक्रवर्ती के माधुर्य का दम्बनी से बहुत कुछ बतलाया गया है, उसको समझ लेंगे। विशेष करके तृणादपि सुनिच होंगे तरोरपि सही सुनना अमानी ना मान देना कृत्रिम। इस प्रकार से जब निष्ठा हो जाएगी बुद्धि पूर्विका निष्ठा होगी, मन स्थिर हो जाएगा। अब यह देखना है कि हमारा मन स्थिर हुआ कि नहीं। भोगों की लालसा से ही कामना से ही मन अस्थिर हो जाता है, इसलिए निष्ठा होना है। जब निष्ठा परिपक्व हो जाएगी तब फिर चतुर्थ जाम में चलेंगे रुचि पूर्वक भजन। रुचि आ जाने पर अब डर बहुत कम हो गया। रुचि आने के पहले ही घर भी छोड़ दिया, संसार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और रुचि भी नहीं आई। इसी समय में यह काल बहुत ही क्या है, क्रिटिकल। इसी में साधक लोग घर बार छोड़ देते हैं, फिर साधक विवाह कर लेता है या कर लेती हैं और फिर अपना वही पुराना चलने लगता है। रुचि तक में डर है, इसलिए रुचि तक साधु संघ में जरूर रहो। साधु संघ को छोड़ा और तहां गया सर बना। हम लोग बहुत चेष्टा करते हैं साधु संघ में आओ, साधु संघ में हरि कथा। साधु संघ करने से नहीं होगा, इसलिए जब रुचि उत्पन्न हो गई और उस रुचि में भी दो प्रकार की रुचि, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिणी पहले और तब
वस्तु अनपेक्षिणी,
दो प्रकार की रुचि हो। भले ही ठाकुर जी का यहाँ पर तो ठाकुर जी का बहुत श्रृंगार है, इसलिए और मंदिरों की अपेक्षा हम लोगों के यहाँ पर लोग देख करके बड़े आकर्षित होते हैं और लोग भी कीर्तन करते हैं, किंतु कृष्णदास का स्वर जरा मधुर है ना, और उसके साथ में ताल बजे, पखावज बजे, सारंगी और पियानो इत्यादि बजे, तब तो कहना गया, तब तो इस मठ में खूब कीर्तन अच्छा हो। और उनसे भी उन्नत आदमी व्यक्ति यदि गला थोड़ा सा इधर रहे और वो पुकार करके रो रो करके यदि कीर्तन भी करता है तो वो अच्छा नहीं है। किसको अच्छा लगेगा? जो वो पहुंच गया है रुचि में उनको अच्छा लगेगा, अथा नहीं होगा। और इसके बाद में जैसे भी कोई कीर्तन कर रहा हो और सुना उसका भाव से गदगद हो, वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षित यही रुचि। और थोड़ा सा आगे परिपक्व हो गई तो बस काम बन गया, पतन की आशंका बहुत कम आसक्ति में। उस समय में आसक्ति भी दो प्रकार की,
भजन विषय,
भजन विषय और भजनी। पहले भजन के प्रति होगा ये आसक्ति और फिर यही वस्तु के प्रति ले आएगी, कृष्ण के प्रति ले आएगी। इस तरह से आसक्ति में हम लोग पहुंचे। उस समय साधक आसक्ति के सहित कृष्ण के चरणों में शिक्षाष्टक का पंचम श्लोक स्मरण करता है, अयि नन्द तनुज किंकरं पतितं मा विषमे भवमुदौ कृपया तव पाद पंकज स्थित ध्वनि सदृशं पृच्छन्। एक्सप्लेन।
श्री गुरवे नमः। Yesterday, we discussed the meaning of the first yam in Bhaktivyam Sada, Nishantam Bhajan, the subject matter of the first of the eight parts of Bhaktivyasa is Shraddha, faith. For the second part, Yutiya Yam, is called Bhaktikalin Bhajan, or Bhajan in the morning time. And this corresponds to the stage of Anatta Nibriti, the gradual clarification of anattas. So these anattas are of various types. First of all, they've been divided into four categories. Swabhram, means philosophical misconceptions. Then, asatrishna, the thirst for temporary things. Then, aparad, offenses. And finally, vritta-durbalya, the weakness of heart. So these four types of anattas have also been divided into four categories. First, swarupram is divided into swatattvagram, not knowing one's the nature of the jiva swarup, and bhagavatattvagram, not knowing the nature of bhagavat swarup, and sadhu-sadhu-tattvagram, not having a clear understanding or being affected by misconceptions in regard to the goal of one's sadhana and the method to attain it. And finally, sudden devotee from misconceptions in regards to discriminating what is unfavorable or detrimental to making progress in sadhana bhajan. Then, asatrishna. Asatrishna means first for temporary things. First means desire to enjoy sense gratification in this physical plane that we're experiencing now. Second is to aspire for sense gratification in Swargalok, in the heavenly planets in one's next life. Then, Asmasiddhi Havaniti, the desire to enjoy eight types of mystic perfections or the nine jewels of Kruger. And finally, the desire for Mukti is also Asatrishna. So then, Aparad. Aparad is divided into four categories. Offenses to the Holy Name, offenses to the Sri Rudraha, of Sri Krishna, and then offenses to all living entities.
Jiva Prad. Dharma Prad.
Krishna, Krishna, Sri
Krishna. I've already spoken to the time, Dharma Prad. Oh, Tudhya, Tudhya Prad. It means making friends to those things which are connected to Krishna, such as Tulsi, Ganga, Yamuna, Dhamma, all of these. So then, vritta-durbalya, weakness of heart, divided into four categories. It includes the desire for pratishtha, reputation, name and fame. It includes tucha-asakti, inordinate attachment to insignificant things. It includes finding fault in others and duplicity. These are four types of the vritta-durbalya or weakness of heart. So then, these anattas have to be cleared. Then there's another analysis of anatta beginning with lying, laziness, the tendency to sleep while doing bhajan. Then, vikshep, distraction of the mind. Apratipati means, despite not being affected by sleepiness or distraction, one has no hampering or eagerness for serving the object of one's devotion. Apratipati. Then, kasai, the tendency to be impetuously involved in enviousness towards another living entity, to become angry, and rasasvada, the tendency of the mind to dwell on sense objects. So then, another four types of anatta, dushtikottanatta, suttikottanatta, aparadottanatta, bhaktottanatta, means the obstacles which come in our bhajan arising from our previous impious activities, that's called dushtikottanatta, obstacles which come as a result of having this pious activity, secret of anatta, apna-anatta, obstacles which arise due to the forms of offenses in the past, and vata-lokananya, the obstacles which arise by performing bhakti, but mixed bhakti, not pure bhakti. So, when anatta-nirvritti is going on, the anatta is being cleared, not completely, but partially, then one enters into the third yam, that is nisha. So nisha means spirit buddhi, that the mind, the intelligence, is very, very steady at the time of hearing, chanting and remembering. So we can examine ourselves and see whether or not our mind is fixed at the time of hearing, chanting or remembering, or whether it's wandering here and there. If the mind is wandering, then one has not attained the stage of nisha. So, why does the mind become unsteady? Because the mind is agitated by samsaric vasana, by the total desire, which causes the mind to become pressurous. So when these are cleared and initially becomes mature, he enters into the fourth yam. The fourth yam corresponds to the stage in bhakti known as ruchi, taste. Taste is extremely important. It is seen that sometimes the sadhak, he renounces everything and he leaves his home, but he has not yet developed taste. And this is a very, very critical point in spiritual life. If taste will not come, then after some time, he's bound to again become entangled, to get married or any other type of entanglement. So the only way to go past the stage of nishtha, where there is steadiness but no taste, and enter into the stage wherein there is taste, is by sadhu sangha. Therefore, it's extremely important. One must remain in sadhu sangha at least up until the stage of ruchi. Otherwise, one will be in a very precarious position. So, in that sadhu sangha, one will hear Hari Katha, and this will cause the awakening of ruchi, taste. So, one should make a very determined endeavor to being in the association of pure devotees. So this ruchi has two stages, bhakti vaisishta apakshini and bhakti vaisishta anapakshini. The first stage, bhakti vaisishta apakshini, means that one's taste is apakshini, dependent. It depends on bhakti vaisishta, the speciality or the quality of the substance. For example, if one takes darshan of the deities, and the deities are not dressed very elaborately, then one will not have taste in this day. But seeing only decorations and lights and animals and everything, then one will think, oh, how beautiful this darshan is, and you will have more taste. If someone is doing kirtan, and they're playing some instruments, keyboards, and the singer is expert like Krishna Das, then you will have taste in this kirtan. But if a very advanced devotee is doing kirtan, but he's singing off-key, but he has tears in his eyes and singing so much bhav, the devotee will not have so much taste in this. So that stage is called Vastu Vaisiksha Apakshini, where taste is dependent upon Vastu Vaisiksha, the speciality of the substance. So, if there is an advanced devotee, he comes in the stage of Vastu Vaisiksha Anapakshini. Anapakshini means not dependent. So when he's not dependent on the quality of the ingredients, then if you will hear kirtan, anyone's kirtan, it may be in tune, out of tune, in time, out of time. But as soon as he hears the names of Krishna being chanted, then his voice will choke and he will become overwhelmed with emotion. So that is the custom of Vaisiksha Anapakshini, the highest stage of ruchi. When this stage becomes mature, it transforms into asakti, deep attachment. This deep attachment has two stages, vajana vishayak asakti and vajani asakti. In the first stage, the devotee, he has attachment, and this attachment is to hearing, chanting, remembering. His attachment is in the practitioners of vajana. But when his asakti becomes more mature, it's called the vajani asakti. He has attachment for hearing, chanting, remembering. But now, in the superior position, is his actual attachments to the object of that hearing, chanting, and remembering, Radha Krishna or his Ishtadevi themselves. So, when a devotee is in the stage of asakti, he will pray and remember his Ishtadevi according to the mood expressed by Sri Chaitanya Mahaprabhu in the fifth verse of Sri Shastakam, Ayinam Yatamudipi Karam, Atin Adhanam Vishamayi Bhavambudam. So, now we hear from the lotus lips of Srila Gurudev this mood which is contained within the fifth verse of Sri Shastakam.
Krishna Shakti ke samay mein ये पंचम साधन है ना
जी,
और उसमें शिक्षास्तक में चेतो दर्पण मार्जन भव महादावाग्नि निर्वापन श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधु जीवन ये आनंदामृत है नहीं ये 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 विद्यावधु जीवन विद्यावधु जीवन है। उस समय में कुछ कुछ सिद्ध स्वरूप का आभास होने लगता है, ये भी बतलाएंगे। ये श्लोक का तात्पर्य ही है, अय नंद तुम जिंकरम पतितं मां विषमे भवाम बुधौ कृपया तो पाद पंकज स्थिति धूलि सदृशम विचिंत। हे नंदनंदन, अपने कर्म फल से भव सागर में पड़े हुए अपने नित्य दास को कृपा कर अपने चरणों की धूलि, चरणों में लगी हुई धूलि के समान अपना कृत दास समझें। मैं आपका खरीदा हुआ दास हूं। जब ऐसी आसक्ति की दशा होती है तब प्रार्थना में दीनता और रुदन होता है। यदि हम पढ़ते हैं, श्लोक पाठ करते हैं, स्तव स्तुति करते हैं, तो उसमें प्रार्थना में दीनता रहेगी। वो क्या है, संप्रार्थना रूप गोस्वामी का दूसरा श्लोक, हा देव काकु भरकत गदयान के बाद साक्षात में राधा जी हैं खड़ी और उनकी हम प्रार्थना कर रहे हैं, भावावेश में रुदन भी होगा। यदि आसक्ति आ जाएगी तो क्यों, क्योंकि अनर्थ करीब करीब सब दूर हो चुके हैं, हृदय भी निर्मल हो गया है, रुचि भी बढ़कर के आसक्ति हुई है। इसलिए इस समय की प्रार्थना में जो भक्त उस समय स्थिति में पहुंच जाता है, भाव से गदगद हो जाता है, साक्षात रूप में अपने इष्ट देव को देखता है और फिर वो रुदन करता है। आसक्ति की परिपक्व दशा में सिद्ध देह का आभास होने लगता है। इसके संबंध में उस दिन मुझे याद नहीं आया था, थोड़ा सा बतलाऊं। भरत महाराज मृग साहु को अपने पास रखकर उसमें आसक्त हो गए, भावावस्था पे पहुंचे थे, कहते हैं जी भाव भी उनको आया था और उस समय में पहुंच गए, और मृत्यु के समय में हिरण की चिंता करने लगे। तो हिरण की चिंता करने से हुआ क्या, हिरण बन गए। तो वैसे ही हम भगवान की परिकरों का चिंतन करेंगे, मैं राधा दासी हूं, हमारा ये सिद्ध स्वरूप जो गुरु जी ने बतलाया है या हृदय में स्फूर्ति हुई है, यही मेरा स्वरूप है, तो क्या होगा,
ऐसे
वैसा ही। किंतु कब,
आसक्ति
भाव यदि मृत्यु होने लगे तब समझो मृत्यु होने लगे तब तो वो मृत्यु होते समय में कैसे आएगा सारा जीवन
अभ्यास करने से
ऐसे ही अभ्यास होते जाएगा उसका चिंतन करते जाएगा मरते समय में वही चिंता आएगी और वही होने के बाद में वैसा ही जन्म होगा तो जो कोई गोपी भाव का चिंतन अभी से कर रहा है ध्यान कर रहा है इसको कल्पना मत समझो ये भी आया कहां से आया भाव भजन के प्रभाव से ही तो आया है आसक्ति वैसी हुई है इसलिए ऐसा यदि हो तो अगले जन्म में गोपी गृह में जन्म होगा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बहुत आश्वासन दे करके कह रहे हैं कृष्ण की लीला जहां हो रही महाप्रभु की लीला में पहले पहुंचे हुए जोगमाए वहां पर पहुंचा देगी जिस ब्रह्मांड में महाप्रभु जी की लीला हो और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा परिपक्व होकर के तो कृष्ण की जहां लीला होगी वहां पर पहुंचेगा और वहां पर करके नित्य सिद्धा गोपियों के संग में और फिर कृष्ण लीला में प्रवेश कर जाए तब फिर वह गोलोक वृंदावन के लीला में भी प्रवेश कर जाएगा उसी तो सिद्ध देह का कुछ आभास होने लगता है भजन के साथ भजनीय वस्तु में भी आसक्ति हो जाती पहले भजन में निष्ठा होनी चाहिए बिना हरिनाम किए हुए इतना एक लाख खाऊंगा नहीं इसके बाद ना और कुछ करूंगा वैष्णव के मुख से जरूर कुछ श्रवण करना है इसी तरह से पहले वो काम भजन में निष्ठा श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवन अर्चन बंदन दास सत्यात्मनिवेदन और इसके बाद में अपने आप वो बदल जाएगा भजन में आसक्ति रहते हुए ही भजनीय में आसक्ति हो जाएगी जब ऐसे हो जाएगा तो भगवान ऐसे भक्तों की पुकार को सुनते हैं वो बदला गया ना शरणंग शरणागति होई में जहा तहार प्रार्थना सुने यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि आसक्ति के समय में होगा शरणागति हुए भी सुनिए कि नहीं शरणागत भक्त जब ऐसे यहाँ तक आएंगे तो भगवान उसकी पुकार को सुनेंगे और भजन करते करते श्रद्धा नर्तन वृत्ति होने पर रुचि उत्पन्न होती है इसी स्थिति तक भक्त की पुकार अंतर्जामी जब विष्णु है वो सुनेंगे कृष्ण नहीं सुनेंगे अंतर्जामी भांति वो ग्रहण करते हैं और जहां आसक्ति होगी उनकी उनका इष्ट देव स्थिर हो गया जिसको वो फॉलो कर रहे हैं जिनका अनुगमन करके रागानुगा बन रहे हैं जिन परिकरों का उसके प्रति भी उनकी आसक्ति हो जाती है इसलिए आसक्ति की अवस्था में भक्त की पुकार कृष्ण श्रवण करते हैं और करुणा से द्रवित हो जाता है बिल मंगल की पुकार सुनी कि नहीं अनर्थ जब निवृत्ति हो गई कृष्ण आ गए और उसकी कर्ण पुकार को सुना सारा क्या नाम
कृष्ण
को सुना लठिया पकड़ करके बिंदा मन लेते और उसकी भाव सिद्धि और प्रेम सिद्धि तक कराई एक्सप्लेन अरे पांडा के खबर दिए छ
हाँ बोले खबर खाने का आसे ही नहीं
आसे ये पांडा अच्छा ठीक हाँ बोलो हाँ बोलो
It corresponds to the stage of asakti. You see that in the first slok, the first verse of Sri Chaitanya, there is an overview of all the elements. So Chaitodharpanavajana corresponds to the stage of that is summarized in super form in the original verse, the first verse of Shishastika, by the phrase, that is, is the life and soul of Shishastika. So when the devotee comes into the stage of Asakti, and this Asakti is Machiva, at that time he realizes the Abhas of his Siddha Guru. That means some slight realization of his transcendental spiritual body, which is suitable for serving the divine couple. At that time, he weeps. I am the Timurjakin Karam, Atitapam, Vishamay, Babam Budo, Kripaya, Tavaparam, Kajasti, Tipuri, Satisham, Vishikraya. Honor the Nandan, also Nandan Maharaj, I am fallen in the endless chain of birth and death, and I am suffering the reactions of my own misdeeds. Kindly uplift me and accept me as your servant. Consider to me to be like a particle of dust at your lotus feet. So, the devotee is gradually advancing. He's praying, his mind becomes fixed, ruchi and asakti comes. Now he's very, very humble and he's weeping and calling out with very pathetic prayers like Sri Rupa Goswami Pad. But with a choked voice, I roll on the ground and I beg you again and again. I know that I am foolish, but please accept me. So, this deep humility and crying out from the core of our heart in a very pathetic mood, it arises. Why? Because now the notches have gone far away and the heart is pure. So, there's a special consideration in this regard. We see that Bharat Maharaj, he was doing his sadhana bhajan in the forest, and there he became attached to a deer. So he actually reached up to the stage of Rati, up to the stage of Dhar. But every day he was associating, playing with the deer with attachments, and when the last moment of his life came, he remembered that deer and he became the deer himself. So this example is being given in Srimad Bhagavatam to prove to us a particular principle. What is that principle? If someone will be, every day they will hear, chant and remember about Sri Krishna, and not Krishna alone, but especially the associates of Krishna, his parikars, he will accept the abhiman, for the self-conception that I am Dasya Radhika. And as he comes into the stage of Asakti, a spirit he will come into his heart of his identity. And that identity will be confirmed and delineated by the instructions of his guru. So then his whole life is passing, meditating in this way. What will happen at the time of death? It is certain that he will think in this way at the time of death, and he will also become an associate of Krishna. It is absolutely certain. And therefore, it is essential that throughout our whole life, neglecting thoughts of all other kinds of things, we should always keep our thoughts in remembrance of Krishna and his associates. And then, at the time of death, surely we will remember this and become an associate of Krishna. There is no need to imagine Siddhadeha, but rather, by the prabhav, or by the powerful influence of bhajan, nam bhajan, then this realization will naturally awaken in the heart at the time of asakti. Srila Shantaka also described that if one will remember in this way, in the state of asakti, gradually bhav will come, and when it's time to give up his body, where will one go? Actually, first you enter into the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And by associating with his associates, his devotion will become more mature. And then he'll take birth in Krishna Lila. But where? Not in the Lord Vrindavan, in Balam Vrindavan. In the Prakat Lila, the manifest pastimes of Krishna on the earth planet in some particular universe. And then, by associating, he'll take birth in a, from the womb of a gopi. And by associating with the Nitya Siddha gopis, then that devotee's mood will become even more mature. And when that leader is, he is mature by that association, then he will arrive in the upper kapita in the low Vrindavan. So this is the process. So if one wants to attain asakti and realization, genuine realization, without imagination of one's siddha swarup, then you have to do bhajan with extreme determination. You have to make a vow. Until I complete it, 1 lakh harinam, I will not rest, I will not eat anything even. And if you go and do bhajan with such determination, you will get attachment to bhajan, and then attachment will come to bhajaniya. And when his asati is mature, then he can realize his swarup. So, when the devotee is in that stage and calls out Ayananda Tanuja Vikaram, he begins to pray in a very humble mood, then Krishna, he hears his prayers. Srila Bhaktivinoda Thakur said, Sad Anga Sharanagati Hoiveja Taha Pratana Shumi Srinanda Kumar. When a person has fully adopted in their life the six limbs of Sharanagati, then if he will pray to Krishna, Krishna will hear his prayers. So what does it mean? It means conversely, if one is not mature in the six limbs of Sharanagati, he is not unconditionally surrendered, if you pray to Krishna, Krishna will not hear that devotee's prayers. Who will hear? Antaryami. Vishnu, in the form of Paramatmanar, he will hear, but Krishna will not hear. But when a person is fixed on devotion to the Ishtadev, and they attain the stage of asakti, not only asakti for Krishna, but asakti for the parikas, the associates of Krishna, and he also prays to them. Then what happens? When he prays, Krishna hears his prayers, and Krishna's heart melts. And when Krishna's heart melts, he comes and he gives darshan to his devotee. Srila Guru has given the example of Sri Bhilamana Thakur. Bhilamana Thakur was so attached that he removed his own eyes so that he would not see anything of this world. And he was calling out to Krishna and offering so many prayers, and Krishna personally came to listen to those prayers. So those prayers are being compiled in one book. That book is called Krishna Karanamrita. The prayers which are like nectar for the ears of Krishna. So when the devotee is in this advanced stage, his prayers are like nectar for the ears of Krishna. Krishna's heart melts and he comes to hear the prayers of that devotee. So Krishna came to Gopalama Thakur, and because he was blind and could not find his way to Vrindavan, Krishna personally met him with his own hands and brought him here to Vrindavan.
Powerful chat. After our class, हमारे क्लास के बाद में प्रवचन के बाद में हम लोग गोपीनाथ भवन में जाएंगे और वहां पर बाल्य भोग पारण प्रस्तुत है, वहां जाकर के वितरण होगा और फिर जल्दी से प्रसाद पा करके और फिर जाना है बेलबाग, नौका वालों से बातचीत कर लेना और बेलबन जा करके दोपहर में आ जाएंगे वहां गोपीनाथ भवन में। बस आज का और शाम को नियमित रूप में वहां क्लास होगा, वहीं पर प्रवचन होगा।
जाते समय गोपीनाथ होके जाएंगे।
टुडे आफ्टर आवर क्लास वी विल ऑल गो टू गोपीनाथ भवन, that Bali Bhog will be given to all Paran, and then after that you will go to Belban
through Gopinath Gauriya Math.
Through Gopinath Gauriya Math you will go to Belban ek baar ja, and then coming from there prasadam will be given